इस तरीके से इशू पे मैंने कभी बात ही नहीं की। और ये पॉडकास्ट इसीलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इशू पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने कंट्री को डेवलप कंट्री देखना चाहते हैं देन वी हैव टू फोकस दीज काइंड ऑफ इशू। ओके सो हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं लाता हूं आपके लिए पॉडकास्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके से नए पॉडकास्ट मिलते रहें। ओके तो हम बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में, इंडिया में गरीबी क्यों है और इसके क्या वो रूट कॉज हैं, वो जमीनी लेवल पे क्या कारण है, उनको हम किस तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं ताकि हम अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देख पाएं। तो अगर हमको 5 to 6 years डाउन द लाइन एक बेटर कंट्री, वैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, उनका एक कह सकते हैं कि ड्रीम था कि 2020 तक हमारा जो कंट्री है एक अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन वो चीज़ एक तरीके से उनका सपना साकार नहीं हो पाया, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, है ना। बट वी नीड टू फिक्स। देखिए ऐसी बहुत सारी बातें करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको फैक्ट दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये एक्सपीरियंस मुझे कब हुआ, ये मुझे एक्सपीरियंस तब हुआ जब मैं इन सब टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहा था। मुझे पता चला कि मैं बहुत कुछ इसमें बोल सकता हूँ, बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। एक एक गरीबी, एक पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट द सोशल इशू, ये एक सिर्फ सोशल इशू नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। और इसको अगर हम समझ लें तो हम बहुत सी चीज़ों को एक तरीके से टैकल कर सकते हैं अगर हम इस पे जमीनी लेवल पे काम किया जाए। बस मैं यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो फैक्ट बताऊँ जो ज़रूरी है आपको जानना, और हो सकता है कि आप लोग इनको समझ के कुछ ना कुछ एक्शन लो, है ना। तो हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ इन सब टॉपिक्स के बारे में, लेकिन मैं इससे अवेयरनेस फैला सकता हूँ जिससे बॉस जो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर काम कर सकते हैं, है ना। तो मेरा काम क्या है कि मैं ऐसी अवेयरनेस फैला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक माध्यम है, मेरे पास एक पॉडकास्ट, एक प्लेटफॉर्म है, सो आई हैव टू डू दिस। ओके सो देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तो निकल के आएगा ही एट द एंड, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि एक ज़माना था जब मतलब पॉपुलेशन नहीं थी इंडिया में ज़्यादा, ठीक। ये अगर मैं बात करूँ तो 1991 के आसपास हमारे पास जो पॉपुलेशन थी अराउंड 84.3 करोड़ की थी, ठीक। लेकिन ये आते आते 2020 और 21 तक ये 130 करोड़ हो गई, है ना। तो ये एक तो सबसे बड़ा कारण तो है ही कि हमारे पास जब इतनी सारी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा जनता है और आपके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है तो पॉवर्टी एक लाजमी चीज़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग हैं रिच माइंड सेट के, कुछ लोग हैं पुअर माइंड सेट के। आई एम नॉट सेइंग दिस इन आई मीन फाइनेंशियल कंडीशन, मैं कह रहा हूँ इसको माइंड सेट के हिसाब से कि ये जो माइंड सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि माइंड सेट ही मैंने ये बात क्यों कही, ये बात मैंने इस बेस पर कही कि अगर आप एक एजुकेटेड बंदे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं एक रिसोर्सफुल पर्सन बनने के लिए, है ना। क्योंकि एक आपने कोट भी पढ़ी होगी कि अगर आप रिसोर्सफुल नहीं हैं, मतलब आप अगर गरीब हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको रिसोर्सफुल बनना है, ठीक। तो रिसोर्सफुल आप कैसे बन सकते हैं, जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपको पता होगा कि हम रिसोर्सेज को लिवरेज कैसे कर सकते हैं, हम उनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। लेकिन जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे करोगे भाई। सो दिस इज द प्रॉब्लम ना, कि हमको अगर पता ही नहीं है कि इससे हमको निकलना कैसे है तो हम कैसे निकलेंगे, हम तो उसी में पड़े रहेंगे ना। एक कुआं जो होता है ना उसका मेंढक बन जाएंगे। और जब हमको बाहरी दुनिया की नॉलेज ही नहीं है, और एक कहा भी जाता है कि एजुकेशन जो है इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है। अब देखिए इसका मैं आपको सिंपल सा स्टोरी समझाऊं कि जैसे एक बंदा है, ठीक, एक गरीब परिवार में एक स्लम एरिया में एक लड़का पैदा होता है जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास ना कोई काम है ना उसने पढ़ाई की है, तो उसको जो भी पहले दिखेगा, जिसको कहते हैं ना गलत संगत, तो आराम से पकड़ लेगा। उसके लिए ही है कि उसके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो गलत काम करते थे, नंबर दो का काम करते थे, और मतलब ऐसी चीज़ें जो अक्सर कर बहकावे में आ जाते हैं। दोस्त ऐसे बन जाते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ें की तो उनका साथ मिल गया तो वो भी सीख गए और करने लगे। जैसे आपने देखा होगा जो चैन स्नेचर होते हैं, ठीक, चैन खींचते हैं, और बहुत सारी चोरी वोरी वाले ऐसे, तो आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें होगी। तो इसका मेन रीज़न क्या है? नीड है, एक आवश्यकता है ना। और कुछ लोग इसको पर्पज से भी करते हैं, मतलब कुछ लोगों की बचपन से आदत हो जाती है। अब देखिए, कोई भी पैदा होते ही ना कोई चोर पैदा हुआ, ना कोई ईमानदार, ना कोई, एक जब कोई बच्चा पैदा होता है दुनिया में तो एक नॉर्मल होता है। उसको कुछ भी अवेयर नहीं होता है कि उसको क्या करना है, उसको ये भी नहीं आइडिया होता कि उसका क्या पैसा है, वो क्या करेगा लाइफ में, और उसको क्या करना है देश के लिए, क्योंकि वो तो अवेयर नहीं है ना। लेकिन जिसको जैसा माहौल मिलता है वो उसी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेता है, इवॉल्व कर लेता है, और उसी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको डीपली समझें, अगर ये जो रूट कॉज है, जो गरीबी है, इसको अगर हम समझ पाए तो हम इसके जो उपाय हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या साधन है, मतलब हम दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर एक बंदे को एजुकेटेड बना दिया जाए तो उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है, ठीक, उसको एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो वो पैसे कमाएगा, तो वो फिर ऐसे गलत रास्तों में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जब आसानी से अच्छी ज़िंदगी मिल रही है तो फिर वो गलत रास्ते क्यों चुनेगा। सिंपल सी बात है, कहा भी जाता है कि पेट सब कराता है ना, ये लोग कहते हैं, मैंने बड़े बूढ़ों से ये बात सुनी कि पेट सब कराता है। अगर कोई चोर बनता है तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, उसको जब पहली बार, शायद वो जब बच्चा होगा तो शायद वो उसको खाना नहीं मिला होगा, किसी मांगा होगा, नहीं दिया होगा, तो फिर उसने चुराने का काम किया, फिर उसको एक बार उसने किया तो उसने फिर बार बार करना चालू किया, क्योंकि इसमें आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है, चुपके से ले लिया, फिर छोटी से बड़े लेवल की चीज़ें सीख गया, बड़े से और बड़े बड़े कांड करने लगा। तो ये सिंपल सी बात है ना, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई नहीं सीख सकता। आजकल जो भी हो रहा है वो सब इस बेस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसकी ज़रूरत उसको करवा रही है, और अगर उसको उसकी ज़रूरत अगर पूरी हो जाए तो ये काम बंद हो सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम जो रूट कॉज हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हम अगर काम किया जाए। अब देखिए, नोबल प्राइज विनर नेल्सन मंडेला, उनका कहना है कि पॉवर्टी इज दी नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड। जो गरीबी है ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अपने आप नहीं आ गई है। अगर कोई पैदा हुआ तो वो गरीब पैदा नहीं हुआ, ठीक, लेकिन ये फिर मैन मेड क्यों है? तो इसका लॉजिक ये है कि जो इंसान है उसने सबसे गलत काम क्या किया है, वो किया है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक, जैसा कि मैंने बोला है कि पॉपुलेशन जो है इस समय 130 करोड़ है और 1991 में 84.3 करोड़ के अराउंड थी, ठीक। तो देखिए, बहुत सारी जब पॉपुलेशन होने का मतलब है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और देखिए हर दिन हर एक को खाना खाना है, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहता, तो कुछ लोग तो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ लोग आज भी भूखे सोते हैं। दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी भी लोग भूखे सोते हैं, और जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँगा इस समय भी जाने कितने लोग भूखे होंगे, जिनको खाना नहीं मिला होगा, जो खाने के लिए सोच रहे होंगे काश मुझे कहीं से मिल जाए कुछ खाने। यस, ये फैक्ट है। लेकिन इतनी सारी जनता क्यों है? क्योंकि हमको एजुकेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर एक परिवार का, जो कोई गरीब परिवार से बंदा एजुकेटेड हो जाता है, तो वो अपनी जो पॉपुलेशन उसको भी कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, उसको पता है कि क्या करना सही है क्या गलत है। लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो कुछ भी करेगा, किसको फर्क पड़ता है? मतलब फर्क तो पड़ रहा है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि उसको पता नहीं, उसको उस चीज़ का कोई ये इल्म नहीं है, उसको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है कि वो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट होगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा जमीनी लेवल पे देखो, एक गांव में एक किसान है, उसके पास चलो 10 बीघा जमीन है, ठीक, और लेकिन वो एजुकेटेड नहीं था, तो उसके यहाँ जो संतानें हैं वो हैं 6, तो वो 10 बीघा जमीन अब 6 लोगों में बटेगी, ठीक, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी। और बताइए उसी अगर 6 से फिर अगर 4-4 की उम्मीद हो जाए तो समझ रहे हो ना कि ये जो लाइन है ये बढ़ती जाएगी। वही वो जो जय हो मूवी में वो है ना कि आप एक की मदद करो उससे 3 के लिए बोलो, 3 से 3 दर का 9 × 27 वो जो रेशियो गुणा होता चला जाता है ना, तो उसी तरीके से तो पॉपुलेशन बढ़ रही। अब हर एक घर से अगर आप मतलब 3 का रेशियो लेके चलो, 3 का गुणा करते चलो, तो इस तरीके से कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर 84 करोड़ में अगर इस तरीके से 3 का गुणा होता चला जाएगा तब भी तो वो यहाँ तक आने में कोई टाइम थोड़ा ना लगेगा 130 करोड़ तक पहुँचने में। तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो वो समझेगा कि अगर हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, आपको अगर फ्यूचर में हमको रिसोर्सफुल रहना है तो हमको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना होगा। तो एक तो ये होगा पॉपुलेशन वाली चीज़, ठीक। दूसरी हो गई कि एजुकेशन। अब देखिए ये दूसरे से एक दूसरे से कनेक्टेड है। एजुकेशन है तभी पॉपुलेशन रुकेगी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। क्योंकि बंदा एजुकेटेड होगा तो उसके पास क्या होगा, उसके पास जॉब होगी, जॉब होगी मतलब उसके पास पैसे होंगे, पैसे होंगे मतलब वो क्राइम नहीं करेगा, ठीक। और प्लस जब उसके पास एजुकेशन है तो वो जो भी मतलब कह सकते हैं कि बच्चे पैदा करेगा वो भी उसके लिमिटेड होंगे, वो उस चीज़ को समझेगा, है ना। तो ये बहुत से फैक्ट हैं जो हमको अंडरस्टैंड करने हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमको समझनी है कि अगर हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर दें तो क्या क्या कर सकता है। वो देखिए एक तो एम्प्लॉयर बन सकता है, ठीक, खुद जॉब क्रिएट कर सकता है, या फिर एक एम्प्लॉय बन सकता है। तो मतलब ये उसके पास दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना टैलेंट है। तो एजुकेशन, अब देखिए बेसिक जो नीड है एक किसी इंसान की वो क्या हो सकती है, एक अच्छा घर हो, पहनने के लिए कपड़े हो, एजुकेशन हो, ठीक, और एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, तो वो इन प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा जिसको हम गरीबी बोलते हैं, ठीक। सोशल इशू तो यही है ना कि गरीबी जो है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत से काम किए हैं और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कोट है, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि हम किसी को पैसे दे के अमीर नहीं बना सकते। अगर किसी को पैसे दे दिए जाएँ तो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि ये माइंड सेट का है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अभी एक मैंने रिसेंटली पढ़ा था एक आर्टिकल, एक कोई बंदा था जो KBC जीता था कौन बनेगा करोड़पति, और वो फिर से इतने सारे पैसे जीतने के बाद फिर से उसी हालत में आ गया। तो मतलब पैसे देना ऑप्शन नहीं है, किसी को आप पैसे दे के अमीर नहीं बना सकते, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से उसको फिर से उड़ा देगा, वो फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट कि हमको एजुकेशन चाहिए, हमको चाहिए लर्निंग कि पैसे को मेंटेन कैसे करते हैं, मतलब पैसे का मैनेजमेंट सीखना हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमको एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमको इन सभी छोटे छोटे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको अगर हमको पता चल जाए, इनके बारे में अगर हमको नॉलेज हो जाए तो हम अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इंडिया में है ये 60% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पे, ठीक। तो ये भी एक तरीके से कारण है, लेकिन इसको आप कारण मत बनाइए, इसको हम कारण नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा है अगर हम इसको डेवलप कर पाएँ, मतलब अगर हम किसानों को वो सारी फैसिलिटी दे पाएँ, उनको इवॉल्व करवा पाएँ, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी जो फसल है उसको हम और बेहतर कर पाएँ और उनको अच्छे दाम दिला पाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान भी चाहेगा कि वो माइग्रेट करे और शहर में आए और इस हसल वसल की चीज़ों में फंसे, क्योंकि वो एक अपने गांव से भी वो चीज़ मतलब प्राप्त कर सकता है, बेसिक फूड, एजुकेशन, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम, जैसे आप हो सकता है किसी गांव में मेरा पॉडकास्ट यहाँ से सुन रहे होंगे, है ना। तो मतलब अब हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनको लिवरेज नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको दो वक्त का खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो एक मोबाइल या फ़ोन, इंटरनेट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमको समझनी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, मैं क्या बता सकता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या सारे ऑप्शन हैं जो जिसपे हम काम कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी की एजुकेशन का स्पॉन्सर ले सकते हैं, किसी एक गरीब चाइल्ड का, किसी बच्चे का, आपको लगता है कि ये डिजर्व करता है, इसको मतलब इसके अंदर इंटेलिजेंस है, ये अच्छा है पढ़ने में, और तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको एक आगे ले जा सकते हैं, तो उसकी हम एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। दिस वुड बी ए ग्रेट वे एक्चुअली, आई वुड से। और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे पुल के नीचे ऐसी जगह पे बिना घर बिना छत के लोग सोते हैं, ठीक। आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास खाने के लिए है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं बेचारे, फुटपाथ पे सोते हैं। तो ये फैक्ट है, ये सिर्फ इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे सिंपैथी आ रही है। देखिए, दया दिखा के और बिना कुछ किए, सिर्फ हाय हाय करके कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू डू इट इन ग्राउंड लेवल, ओके। हमको ज़मीनी लेवल पे काम करना है, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। अब देखिए, मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इससे अवेयरनेस फैले, शायद ये पॉडकास्ट थोड़ा वायरल हो जाए, आप लोग शेयर करो तो शायद वायरल हो सकता है और ये अवेयरनेस फैले। जो फैक्ट मैंने बताए, हो सकता है कि बहुत सारे आर्टिकल में लिखे होंगे, लेकिन लिखे हुए आर्टिकल कहीं दबे रहते हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट, एक बोलता हुआ इंसान शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, एक वीडियो ज़्यादा कारगर हो सकता है एक लिखे हुए आर्टिकल से, एक पॉडकास्ट ज़्यादा कारगर हो सकता है एक लिखे हुए आर्टिकल से, है ना। तो ये चीज़ है, चूँकि इसमें इमोशनल जुड़ा है, इमोशनल अटैचमेंट क्यों है, चूँकि जो बंदा बोल रहा है वो अपनी फीलिंग भी जोड़ रहा है उसमें, लेकिन एक आर्टिकल में आपको फीलिंग नहीं मिलेगी उससे। आप लोग शायद हो सकते हैं पढ़ लोग, यहाँ रिसर्च है, चलो ठीक है, निबंध है, लेकिन इस तरीके से बोलना शायद आपको कुछ समझ में आए। तो इसमें बहुत सारे बेसिक नॉलेज है जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हमारे पास सब कुछ है, हम प्रिविलेज हैं, तो हम ऐसे लोगों को जो गरीब है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जो ऐसे फुटपाथ पर सोते हैं, तो अगर आपके पास क्लोथ हैं उनको आप डोनेट कर सकते हो, हम मदद कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है तो हमारे पास एक चीज़ तब भी है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम अपनी एजुकेशन को फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज आवर फ्री टाइम बाई टीचिंग पुअर स्टूडेंट, उन गरीब बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं, और ये हमारे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर हम उनको बेसिक चीज़ें अगर दे पाएँ, एक तो खाना, ठीक, फूड, है ना, फूड और एजुकेशन और क्लोथ और रहने के लिए घर, तो यही तो बेसिक नीड है। और अगर ये किसी की पूरी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी गलत रास्ते को चुनेगा, वो कोई ऐसी गलत चीज़ों पे फंसेगा, जो कि आजकल हो रहा है। आपने देखा कि क्राइम भी बढ़ रहा है, तो इसका भी रीज़न यही है ना, कि अगर कोई कर रहा है तो उसका, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, ठीक, ये मत समझना। कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं जिनको कितना भी उनके पास पैसा हो फिर भी वो करते हैं, बहुत से पैसे वाले भी लोग करते हैं क्राइम, तो ये आप ये रिस्पॉन्सिबल उनको नहीं ठहरा सकते, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि मैं अगर अवेयरनेस इस बात की फैला रहा हूँ, मैं इस बात पे अगर पॉडकास्ट बना रहा हूँ, अगर मैं इस पे कह रहा हूँ, तो मुझे ये बात भी ध्यान रखनी है, वी हैव टू अवेयर दिस थिंग आल्सो। चूँकि आप किसी को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। वी कांट हैव राइट यार। तो हम उनके लिए मदद कर सकते हैं, हम उनकी जो चीज़ें, उनकी जो प्रॉब्लम, उनको हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है, क्या रहा होगा, क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और क्या फैक्ट थे। लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर हमको अपना कंट्री डेवलप देखना है, देन वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। वी कांट कंप्लेन। हम सिर्फ कंप्लेन नहीं करेंगे, हमको सिर्फ काम करना होगा, क्योंकि रिजल्ट तभी आएंगे। सिर्फ कंप्लेन करने से क्या होगा, करते रहो। इससे पहले भी लोग करते रहे, अब भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सो दिस इज नॉट द वे टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टी होती है और बहुत सारा खाना बनता है, बहुत सारे लोग खोल ऐसे जाते हैं और खूब परोसते हैं अपनी थाली में, परोस लेते हैं और खाते थोड़ा ही है, आधा बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं ऐसे, फिर डस्टबिन में जाता है। और ये चीज़ मैंने कई बार देखी तो मुझे कभी कभी बहुत देख के ऐसा लगता है, अफसोस होता है कि काश यार मैं कुछ इसमें कर पाऊँ। और चूंकि जब आप ऐसी जगह पे हो और आपको पता कि आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पे आपको कोई समझता ही नहीं कुछ, तो आपकी बात कौन मानता है। तो ये चीज़ें होती हैं और इनको देखने के लिए और या फिर इनसे आपको डील करने के लिए आपको चाहिए एक कम्युनिटी। आप अकेले, कहा भी जाता है कि अकेला चना बाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। तो वो सिचुएशन आती है, तो इस ऐसे में लोग आगे आए, एक कम्युनिटी बनाए और मिलके काम करें, तो हम शायद मैसेज भी फैला पाएंगे। और एक तरीके से ये भी मुद्दा है कि अगर हम इस तरीके से ऐसा पॉडकास्ट बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम अवेयरनेस फैला पाएं, ठीक। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है तो प्लीज़ आप ईमेल करिए या फिर आप खुद से ट्राई करिए, खुद भी बनिए एक कंटेंट क्रिएटर जो देश में, दुनिया में ऐसी अवेयरनेस फैलाए, जो चीज़ें बताए कि क्या फैक्ट है। हो सकता है कि बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से बताते हो तो वो एक इमोशनल टच होता है, बहुत से लोगों को पता चलता है। और वायरल चीज़ जो होती है वो अलग ही होती है, उसका रेवोल्यूशन आ जाता है। आपने देखा है ना कि जैसे कोई भी गाना भी अगर कोई गा दे, अगर वो वायरल हो जाए तो रेवोल्यूशन आ जाता है। एक टाइम पे हम पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का माइंड सेट एक साथ बना देते हैं, मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करवा देते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसे टॉपिक अगर वायरल होने लगे कि कभी कोई ये सोशल इशू वायरल हो रहा है कभी इस पे, तो हो सकता है लोग इस पे काम करना चालू करें। बहुत से लोग अवेयर ही नहीं है ना इस चीज़ से, जिनको सब कुछ मिल रहा है उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उनको एटलीस्ट अवेयरनेस तो, उनको पता तो चले कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, और पता चलेगा तभी तो वो करेंगे ना। तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या क्या देश में प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा बताइए कार में जा रहा है और उसको घर से निकलता है, कार में बैठता है और कार से मॉल में जाता है, खाता पीता है, फिर जाता है, फिर आराम से घर में चला जाता है, तो उसको क्या पता कि फुटपाथ पे क्या हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है और देश में क्या चल रहा है। न्यूज में क्या देखते हैं, न्यूज में सिर्फ वो न्यूज ऐसी ही दिखाते हैं जो उनका कंटेंट पका पकाया, जो उनको खाना दे पाए। ज़्यादातर तो ऐसा ही हो रहा है, लोग उसमें भी पैसे कमा रहे हैं ना। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं कि ऐसी न्यूज लाओ जो मसाला हो, अगर मसालेदार होगी तभी तो वो TRP बढ़ाएगी। तो लोग इस पे फोकस कर रहे हैं भाई, अपना अपना सब कुछ देख रहे हैं। तो कुछ हम लोगों को तो आना पड़ेगा ना। अब आप तो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया यार, आओ आगे हाथ बढ़ाओ और इस तरीके से कंटेंट बनाओ। आपने देखा आप ऐसा बहुत कुछ हो रहा है और ये मोटिवेट करता है, मुझे बहुत एक्साइटेड करता है कि यार अगर ऐसा रहा ना तो ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना, जो ये खूब पैसे छाप रहे हैं फालतू में, ठीक ये मसाला देके, ये भी सुधर जाएंगे, ये भी लाइन पे आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो इनका जो धंधा है ना, धंधा पानी सब बंद होगा जल्दी। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर कंट्री, ओके। तो सिर्फ देशभक्ति इसमें नहीं है कि बस बड़ी बड़ी बातें कर लें, मोटिवेशन की बातें सिर्फ कर लें और करें ना। चूंकि अगर एक इंडिविजुअल बंदा कुछ करेगा ना लाइफ में, तभी तो वो एक ऊपर तक जाएगा, एक अच्छी पोजीशन बना पाएगा और कुछ कर पाएगा। तो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करिए, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है पर ट्राई करिए। हो सकता है फेल होगे, लेकिन जब आप ऐसे ट्राई करोगे ना, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे और इन चीज़ों में बात करोगे, तो हो सकता है कि आप भी कोई ना कोई, अगर बताइए 1000 लोग एक ही सेम टू सेम टॉपिक पर कंटेंट बनाएंगे, तो हो सकता है किसी ना किसी का वायरल हो जाए। और अगर एक वायरल होने से अगर सब लोगों का, पूरे देश का माइंड सेट एक सा हो जाता है, एक ही चीज़ पे फोकस हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी की बहुत से लोग उस पर जमीनी लेवल पे उतार के काम भी करेंगे ना। तो यही तो मुद्दा है ना, यही तो मेन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तभी तो मैं ऐसे इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ऐसे अगर मैं पॉडकास्ट बनाऊँ इन सोशल इशू पे और इन चीज़ों पे, एजुकेशन पे अगर बात करूँ, तो हो सकता है कि आप लोग मदद करें। तो अब देखिए, एक और चीज़ है जो मैंने बात की कि माइंड सेट है ना, और इसको मैंने बहुत पहले भी इसमें बात की है, पीछे अगर कहीं पॉडकास्ट में आप देखोगे तो माइंड सेट पर मैंने बात की है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए रिच माइंड सेट, पुअर माइंड सेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली कि एक बंदा करोड़पति बन गया, ठीक, KBC में जीत गया, लेकिन फिर से वो फिर उसी हालत में आ गया। तो यहाँ पे माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे फेक NGO में दान करता रहा, बहुत सारे ऐसे दोस्त बना लिए जिन्होंने सब गड़बड़ करवा दिया है ना। तो सब जब गड़बड़ हो गया तो समझ रहे होगे फिर वही हालत होना लाजमी है। आपके पास कितना भी पैसा है, अगर आप उसको कहते ना इन्वेस्ट ना करो, उसको अगर काम पे ना लगाओ, जैसे कहते ना कि पैसा अगर आपका काम करेगा तो वो आपको और पैसा देगा। अगर आप उसकी पहली संतान को खा लो तो उसके बच्चे नहीं होंगे, तो मतलब आपका जो इकोसिस्टम है वो नहीं बन पाएगा कि पैसे से पैसा बने, वही सेठ चिल्ली वाला सिस्टम कि पहले अंडे होंगे फिर बच्चे होंगे फिर मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, होप यू गॉट माय पॉइंट। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि रिच आर गोइंग ग्रोइंग रिचर एंड द पुअर बिकमिंग मोर पुअर विच बिकम डिफिकल्ट टू फिल द गैप, मतलब इसीलिए ये जो अमीरी और गरीबी का गैप है उसको हम फिल नहीं कर पा रहे। हाँ सही बात है, लेकिन इस पर काम तो करें ना। लेकिन इस पर काम कब होगा, जब हम एजुकेशन देंगे, जब उनको पता होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो होगी ना ये मिलेगी ना उनको, तो अपनी इस नॉलेज को भी इवॉल्व कर लेंगे कि हमको मनी मैनेजमेंट सीखना है, उससे क्या जरूरी। आपको सिर्फ देखिए जैसे KBC वाले बंदे की ले लो बात, ठीक, उसको बहुत सारी नॉलेज होगी क्योंकि वो एजुकेटेड है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको बहुत सारे एजुकेशन लेने के बाद भी लोग मिल जाएंगे जिनको फिर भी नहीं पता है ना। तो ये कक्षा 10-12 तक पढ़ाई करके आप एजुकेटेड नहीं हो जाते, या ग्रेजुएशन कर ली इंजीनियर बन गए आप एजुकेटेड नहीं हो, अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है जो एक आम आदमी को ज़रूरत है। आप इंजीनियर बन के या पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे कमा के फिर भी उसी तरीके से कर रहे हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो एक अगर बेसिक जो मिडिल क्लास का बंदा है, एक फैमिली मिडिल क्लास की, तो बेसिक नीड तो उसको भी आती है, उसको भी सब कुछ आ रहा है ना, उसके पास पैसे हैं, खाने के लिए फूड है, सब कुछ है, लेकिन फिर वो उस लेवल से ऊपर क्यों उठना चाहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो दो चार चीज़ें और कर पाए। जैसे कि उसका तो ठीक पेट भर रहा है, लेकिन वो दूसरों का भी करना चाहता है, तो दूसरों का करने के लिए आपको तभी आप उसको मतलब कर पाएंगे जब आपके पास आपसे मतलब इतने ज़्यादा होंगे कि आप तो हैं लेकिन आप दूसरों को भी दे पा रहे हैं, मतलब आपके पास इनफ है, ठीक। तो ये है मेन चीज़ कि जब हम इस तरीके से ऐसे बात करेंगे, बहुत सारे इन छोटे छोटे फैक्ट पे बात करेंगे और इनको समझेंगे कि अगर हमारे यहाँ ये वाली प्रॉब्लम है, हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, तो इसके जो बेसिक जो है रूट कॉज क्या है और उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए रूट कॉज क्या है, गरीबी का रूट कॉज क्या है, मतलब देश डेवलप नहीं क्या है, एक तो है कि लोगों के पास प्रॉपर फूड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और एजुकेशन नहीं है, एक अच्छी एजुकेशन नहीं है, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्राइमरी स्कूल में जाके ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में देखिए टीचर हैं, अच्छी खासी तनख्वाहें पा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ाते, और वही टीचर पता है प्राइवेट स्कूल में खूब मेहनत करता है, लेकिन जब वो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है तो ऐसे जाके आराम से सोता है, ठीक, बच्चे ऐसे टाट पट्टी पे बैठे आराम से मस्ती काट रहे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी प्राइमरी स्कूल पढ़ता था भाई, और जो मैडम थी ना वो पता क्या करती थी, बस बोर्ड पे लिख दिया, तारीख लिख दी, डेट लिख दी और कच्छा डाल दी और उसमें बोर्ड पे लिख दिया कि हाँ आज ये विषय है। और पूरा पता एक विषय पूरे स्कूल में मतलब पूरे दिन चलता था, वहाँ पे ऐसा क्लास क्लास नहीं लगता था, ऐसे सब भेड़ के तरीके से एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 तक एक साथ बैठते थे हम लोग, है ना, और टाट पे बैठते थे। और स्कूल की जो प्लास्टर में बहुत सारे गड्ढे थे, है ना, वहाँ पे उखड़ गया था और टेबल वेबल कुछ नहीं थी। तो पता क्या होता था वहाँ पे कि जैसे सिर्फ बच्चे हैं, जब उनको देखिए कोई पढ़ा नहीं रहा, मैडम बातें कर रही हैं आराम से अपनी जो सहेली और साथ में उनके साथ बात में लगी हैं, और अपने लड़के बच्चे लेके आती हैं तो उनको उसमें से एक कोई जाएगा लड़की जो उनको खिलाएगी, ठीक, ये सब होता रहा मेरे साथ यार, तो मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो और जैसे कोई लड़का कुछ ऐसे शोर मचाया तो पता है मोटा सा डंडा लेके आती थी और इतनी तेज मारती थी पीठी में कि एक बार में बर्थ छप जाती थी, मतलब वो लाइन बन जाती थी डंडे की, है ना। तो लोग डर के मारे कुछ कहते भी नहीं थे, और कि और ये बात तो कोई कहेगा नहीं, नहीं ये तो कोई नहीं कहेगा कि मैडम पढ़ाओ आके, चूँकि वो सिर्फ एक शिकायत करने जाओ जब इतना तेज डंडा मार देते हो तो तुम अगर इस तरीके से कुछ कहोगे ना तो फिर बताओ कितनी मार पड़ने वाली। तो डर के मारे कोई नहीं कहता था। और जब ऊपर से ही एजुकेशन सिस्टम में ये चला आ रहा है, पूरा हायरार्की ही इस तरीके से बना हुआ है, तो बताइए हम किससे कहेंगे। ठीक है, हमने मैडम से कह दिया, मैडम से बोला या अपने पेरेंट को बताया, उन्होंने उनको मतलब बोला, लेकिन जब ऊपर से ही ऐसा चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम में ही प्रॉब्लम है, पूरे मतलब कह सकते हैं कि हायरार्की में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि शायद ये पॉडकास्ट अगर शेयर हो, लोगों को पता चले, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और ये बेसिक नीड है, एजुकेशन अगर हो जाएगी तो बहुत से लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जा सकती है और क्राइम भी कम हो सकता है, क्योंकि अगर किसी बंदे को हर चीज़ मिलेगी तो वो ऐसे गलत रास्ते क्यों अपनाएगा, नहीं अपनाएगा ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हमको बेसिक जो फंडामेंटल नीड है वो अगर हमारी पूरी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि लोग फिर भी क्राइम करेंगे या मतलब गलत चीज़ों पे। लेकिन हाँ, वो चीज़ है कि कुछ लोग होते ही हैं उल्टी खोपड़ी के, तो उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए है हमारे पास व्यवस्था, लॉ है ना, हमारे पास रूल है, लॉ एंड ऑर्डर है, कायदा कानून है, सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मजबूरी है कि उसको खाना नहीं मिला और उसको ये चीज़ नहीं मिला, उसके पास एजुकेशन नहीं थी, इस वजह से वो इस फील्ड में घुस गया, तो ये गलत चीज़ है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू एक्ट ऑन दिस, ओके। तो देखिए, मैं भी जब ऐसे स्कूल से आता हूँ और मैं इन टॉपिक पर बात कर रहा हूँ तो बताइए मेरे अंदर ये बात बहुत बुरी तरीके से, मतलब क्या कहूँ मैं, कि बहुत बुरी तरीके से गुजरता है ऐसा जब कुछ होता है। तो मुझे लगता है, चूंकि मैं उस चीज़ से आया हूँ गुजर के, तो मुझे लगता है कि मैं इस पर बात करूँ और ये जो चीज़ें मैंने फेस की यहाँ तक आने में, इतना ज़्यादा फाइट करना पड़ता है।